ओमज्ञान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। जयतां सुरतर्पङ्गोर् मम मन्दमतिर्गति मत् सर्वस्वपदाम्भोज राधा मदनमोहनौ। तप्त काञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवि प्रणमामि हरि प्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हम लोग आवृत्ति करेंगे श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंध के दसवें अध्याय का 21 नंबर का श्लोक 5, 10, 21। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। दृष्टः श्रमः कर्मतः आत्मनः वै भर्तुः गन्तुः भवतः अनुमन्ये यथा असतः असत असता उत उद आनयन आदि अभावा समूल इष्टः व्यवहार मार्गः। दृष्टः श्रमः कर्मतयात्मनो वै भर्तुर्गन्तुर्भवतश्चानुमन्ये यथा शतदानयनाद्यभावा समूल इष्ट व्यवहार मार्गः। दृष्टः प्रत्येक प्राणी का अनुभव है। श्रम श्रम थकान कर्मतः कोई भी काम करने से, आत्मन आत्मा का वही निसंदेह भर्त पालकी बाहक या कहार का, गंत चलने वाले का, भवत आपका, च तथा अनुमन्य मेरा अनुमान है, यथा जितना असता असत से, जो तथ्य नहीं है उससे, उद जल का आनयन आदि लाने इत्यादि का कार्य, अभाव अभाव से समूल साध्य पर आधारित, इष्ट पूज्य व्यवहार मार्ग प्रत्यक्ष ज्ञान विषयक अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। आपने कहा है कि मैं श्रम करने में थकता नहीं हूं, यद्यपि आत्मा देह से पृथक है किंतु शारीरिक श्रम करने से थकान लगती है और ऐसा लगता है कि यह आत्मा की थकान है। जब आप पालकी ले जा रहे होते हैं तो निश्चित ही आत्मा को भी कुछ श्रम करना पड़ता होगा, ऐसा मेरा अनुमान है। आपने यह भी कहा है कि स्वामी तथा सेवक का बाह्य आचरण वास्तविक नहीं है किंतु प्रत्यक्ष जगत में यह वास्तविकता भले नहीं हो, फिर भी प्रत्यक्ष जगत पदार्थ से वस्तुओं प्रभावित तो हो ही सकती हैं। ऐसा दृश्य तथा अनुभव गम्य है, अतः भले ही भौतिक कार्यकलाप अस्थायी हो किंतु उन्हें असत्य नहीं कहा जा सकता। तात्पर्य, यहाँ निर्विशेष मायावाद दर्शन तथा व्यवहारिक वैष्णव दर्शन की विवेचना है। मायावाद दर्शन इस प्रत्यक्ष जगत को असत्य मानता है किंतु वैष्णव दर्शन शास्त्री इसे स्वीकार नहीं करते। वे यह जानते हैं कि प्रत्यक्ष जगत क्षणिक है किंतु असत्य नहीं है। रात्रि में दिखाई पड़ने वाला स्वप्न निश्चय असत्य होता है किंतु कभी कभी स्वप्न दृष्टा भयानक स्वप्न से अत्यधिक प्रभावित होता है। आत्मा की थकान सत्य नहीं किंतु जब तक मनुष्य मोहग्रस्त बना रहता है तब तक वह ऐसे झूठ स्वप्नों से प्रभावित होता है। स्वप्न देखते समय वास्तविक तथ्यों से बचा नहीं जा सकता और बद्ध जीव को अपने स्वप्न के कारण कष्ट भोगना पड़ता है। जल का घड़ा मिट्टी का बना होने से क्षणिक नाशवान है, वास्तव में जल का घड़ा जल पात्र नहीं होता तो वह तो मात्र मिट्टी रहता है किंतु जब तक उसे जल भरा जा सकता है तब तक उसका सदुपयोग इस काम के लिए किया जा सकता है, इसे सरासर झूठ नहीं कह सकते। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हम लोग वार्ता सुन रहे हैं राहुगण और जट भरत जी का। काफी दिन से प्रसंग चल रहा है, बीच में तीन चार दिन बंद हो गया था, हम तो दूसरे जगह चले गए थे। राम कथा तीन चार दिन हुई तो फिर से हम लोग आज ही प्रारंभ हो रहा है। और इस श्लोक को समझने के लिए पीछे के बात को याद रखना जरूरी है। कारण यह है, आप कथा जानते हैं, जब जट भरत जी को जबरदस्ती पालकी में जोत दिया गया, उनको ढोने के लिए कहा गया, तो पालकी तो ढो रहे थे लेकिन पालकी की चाल बिगड़ रही थी, वे नीचे देख करके चल रहे थे, जीव जंतु कोई दब न जाए इसका ख्याल रह करके, और दूसरे जो कहार थे वे तो जल्दी जल्दी चल रहे थे, ये जल्दी जल्दी नहीं चल पा रहे थे, तो अब उसकी चाल बिगड़ रही थी। राजा आक्षेप करने लगा, पहले तो राजा डांटे तो रहो गाड़े चुपचाप चलते रहे, लेकिन फिर राजा बहुत आक्षेप किया, वो आक्षेप किया तब रहुगण उसका उत्तर देने लगे, और उत्तर ऐसे दिए कि जट भरत जी उत्तर देने लगे तो उत्तर इस प्रकार से दिए कि रहुगण को यह बात समझ में आ गई कि यह कोई बहुत विद्वान व्यक्ति है, और उनको भय हो गया कि हम तो अपराध कर दिए, जल्दी से पालकी से नीचे उतरे और क्षमा मांगने लगे। उस क्रम में सबसे पहले वे जट भरत जी का परिचय जानना चाहे, उनसे प्रश्न कर रहे आप कौन हैं, अपना भय प्रकट कर रहे हैं कि हमको वज्र से, इंद्र के वज्र से भय नहीं है, बल्कि हम पर युद्ध के समय इंद्र ब्रज वज्र का प्रहार करे तो उससे भय होने की बात तो दूर है, बल्कि प्रहार होने से और युद्ध के लिए उत्साह आ जाता है। वो कई एक बड़े बड़े अस्त्र के गिनती कर रहे हैं कि इससे हमको भय नहीं है, हमको बहुत भारी भय है ब्राह्मण के अपमान से, क्योंकि सिद्धांत यह है कि यदि कोई क्षत्रिय किसी ब्राह्मण का अपमान करता है तो उसके क्रोध से, ब्राह्मण के क्रोध से क्षत्रिय का वंश सहित नाश हो जाता है। श्रीमद् भागवतम में प्रसिद्ध उक्ति है द्रौपदी जी के, जब अश्वत्थामा को घसीट करके अर्जुन ला रहे थे तो उसके बंधन को देखते ही द्रौपदी जी को सहन नहीं हुआ। यद्यपि द्रौपदी की स्थिति यह थी कि वही अश्वत्थामा उसके पांच पुत्रों का वध किया था, और युद्ध में नहीं, उसके बच्चे सो रहे थे उसी समय आक्रमण कर दिया। जब द्रौपदी को यह पता लगा कि हमारे पुत्रों की हत्या कर दी गई है, वो बहुत दुखी हुई, कोई भी माँ दुखी होगी, वो बहुत विलाप करने लगी, इतना रो रही थी, सांत्वयन आह क्रीट माली, अर्जुन उसको सांत्वना देने के लिए कहे कि मैं उसके मस्तक को लाऊंगा, उसी पर तुम उसी को पीढ़ा बना करके दग्ध पुत्रा इन पुत्रों के दाह संस्कार के बाद स्नान करोगे। अर्जुन सांत्वयन उसके सांत्वना के लिए कह दिए। उस समय आवश्यकता थी कि द्रौपदी के शोक को दूर किया जाए, वो इतना रो रही है, रोने से उसको विरत किया जाए, और सांत्वना के लिए ऐसा कह दिए। अर्जुन उसको पकड़ करके ला रहे थे घसीट करके पशु के समान, और अश्वत्थामा के गले में बंधन देख करके असहन त्या, द्रौपदी को सहन नहीं हुआ, और ननाम उवाच च, सबसे पहले अश्वत्थामा को नमस्कार की और अर्जुन से कहने लगी, कई एक बात कही है उसको आप वहां पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें एक बात कह रही है कि आप गलती कर रहे हैं, ये तो ब्राह्मण है, गुरु का पुत्र है, एक तरह से गुरु ही है, और भय उत्पन्न कर रही हैं कि यह क्षत्रिय ब्रह्म कुलम कोपित अजितात्म भी, कोई क्षत्रिय है उसको अपने इंद्रियों पर बस नहीं है, और किसी ब्राह्मण को कोपित कर दिया, ब्राह्मण कोई क्रुद्ध हो गया, तो उसका पूरा वंश ही नष्ट हो जाता है उसके क्रोध से। और सुचार पिता विविध प्रकार के संकट घेर लेते हैं, वो कठिनाई में पड़ जाता है, शोक में पड़ जाता है, तो बहुत भारी कठिनाई हो सकती है किसी ब्राह्मण के अपमान से। रहोगण भी भयभीत हैं, कह रहे हैं कि हमको ब्रह्म कुल के अपमान से भय है। और इतना वो पूछ रहे थे कि आप कौन हैं, मानो जट भरत जी कह दें कि यार इतना हमसे प्रश्न कर रहे हो, कुछ अपने विषय में भी एक आधाइन बोलोगे। तो वे भी बोले कि हम भी राजा हैं सिंधु सौवीर के प्रदेश के, और हम कपिलाश्रम जा रहे हैं। प्रष्टुम प्रविष्ट किमिहारणम में, इस संसार में इस विषम स्थिति में आश्रय क्या है, किसकी शरण लेनी चाहिए, हम इसके लिए पूछने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। और उसी क्रम में कह रहे हैं कि हमको तो ऐसा लग रहा है जिसके पास मैं जा रहा था वही आप कपिल देव ही अपना रूप छिपा करके विचरण कर रहे हैं। और है कि जो योगेश्वरों के भी गुरु हैं, ज्ञान देने के लिए अवतीर्ण हुए हैं, लोक निरीक्षणार्थम संसार के निरीक्षण के लिए आप रूप बदल करके घूम रहे हैं, हम तो ऐसा ही मानते हैं, और हम तो पहचान नहीं पाए, अंध बुद्धि, हम तो गृहसक्त व्यक्ति हैं, जडांध बुद्धि, जड़ व्यक्ति हैं, अंध बुद्धि है। भाई अंध बुद्धि कैसे हो गए, कह रहे हैं कि हम गृह में आसक्त हैं। अब हम लोगों को तो बहुत इसका ज्ञान नहीं है कितना अंतर होता है, लेकिन एक बात स्पष्ट है, खुद राजा ही इस बात को कह रहे हैं कि गृहानुबंध गतिमंद बुद्धि, हम कैसे योगेश्वरों के गति को जान सकते हैं, क्योंकि अंध बुद्धि, हमारी बुद्धि मारी गई है, भाई बुद्धि कैसे अंधी हो गई, क्योंकि गृहानुबंध हम पुत्र परिवार में आसक्त हैं। तो हम एक बात स्पष्ट है कि गृहस्थी का ऐसा जीवन है कि विचार बहुत सीमित हो जाता है, पत्नी पुत्र संबंधी इसी में विचार घूमता रहता है। तो कह रहे हैं कि हम योगेश्वरों की गति को नहीं समझ रहे हैं, तो हमें तो यह लगता है कि आप भगवान कपिल ही हैं। और जब इनको ऐसा लगा कि जिसके पास मैं प्रश्न पूछने के लिए जा रहा हूँ वही यहाँ उपस्थित हो गए, तो इस अवसर का लाभ लेना चाहिए। हमारे मन में जो संशय है, जो चीज पूछने के लिए जा रहे हैं, तो क्यों नहीं यही पूछ लिया जाए। तो जो आक्षेप की जो उक्ति बोले थे जट भरत जी, उसी उक्ति को लेकर के ये प्रश्न कर रहे हैं, तो या अपना टिप्पणी दे रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं। तो इनके वक्तव्य को समझने के लिए, रहुगण के वक्तव्य को समझने के लिए ये आवश्यक है कि जट भरत जी क्या बोले उसको एक बार अपने स्मृति पथ में लाया जाए। जब तक उनकी बात को नहीं ध्यान में रखेंगे तब तक ये श्लोक समझ में नहीं आ सकता। तो एक बार आप ध्यान में ले लीजिए कि पहले तो डांटे रहुगण जट भरत जी को, कहारों को डांटे, है चाल क्यों बिगड़ रही है, ठीक से ढो, कैसे ढो रहे हो। तो वे तो भयभीत हो गए, कहे कि हम लोग तो ठीक से ही ढो रहे हैं, ये अभी अभी जो लगा है इसके चलते चाल बिगड़ रही है। तो राजा है, मैनेजमेंट में दक्ष है, वो सोचे कि अब इसको ठीक न किया जाए तो सबको बिगाड़ देगा, इसके दोष से सब दोष हो जाएंगे, तो उस पर आक्षेप करने लगे, उसको भी कहे ठीक से ढो, और उस पर आक्षेप करने लगे, आक्षेप कर रहे हैं, कह रहे हैं अच्छा अच्छा तुम बहुत दूर से ढो रहे हो ना, अभी वो तुरंत लगा था पालकी में, तुरंत लगाया गया था, एकदम शुरू से ही अमृतसर से तुम ही ढोला रहे हो ना, और एकदम दुबला पतला भी हो, जबकि उनके शरीर का वर्णन है कि खूब हट्टे कट्टे थे, एकदम दुबले पतले हो, बूढ़ा भी हो गए हो, वो ऐसे जब आक्षेप कर रहे थे तो तुम थक गए हो, और फिर भी जट भरत जी कुछ बोले नहीं, लेकिन फिर ऊपर से जब डांटने लगे, देखो जीवन मृत, एकदम मर गया क्या, ये स्थिति रही तो तुमको मैं एकदम ठीक कर दूंगा, दवा दे दूंगा, बोले ऐसे, तब जट भरत जी के मन में आया कि अपने को ज्ञानी मानता है तो इसको ज्ञान से ही परास्त करके इस पर कृपा किया जाए, यदि जट भरत जी की भावना कृपा करने की नहीं होती और राजा जैसे व्यवहार कर रहे थे तो वही गति होती जैसे दस्यु समुदाय का हुआ था। दस्यु समुदाय तो जट भरत जी को लेकर के गया था काटने के लिए, जट भरत जी तो चुपचाप थे, जट भरत जी के मन में कोई उद्वेग भी नहीं हुआ, लेकिन उस अपमान का प्रभाव हुआ कि काली जी प्रकट होकर के सबको मार डाली। जट भरत जी की कृपा की भावना नहीं होती राजा के प्रति तो बहुत संभावना थे कि जैसे दस्यु समुदाय की गति हुई वही राजा के भी हो जाती, लेकिन राजा के प्रति जट भरत जी के कृपा बुद्धि उस पर कृपा करना चाहते हैं, वो इसलिए उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ये तटस्थ रहते तो बहुत भारी प्रभाव आ जाता है। कभी कभी भक्त लोग प्रश्न करते हैं कि मान लीजिए हम किसी वैष्णव का अपमान कर रहे हैं और वैष्णव दुखी नहीं हुए तो उसका असर आएगा कि नहीं, आएगा क्यों नहीं, वैष्णव तो स्वाभाविक सह जाते हैं, लेकिन वैष्णव का अपमान किए तो वे दुख माने या नहीं, राम रोष पावक महजर ही, भगवान क्रुद्ध होते हैं, भगवान के क्रोध में वो व्यक्ति नष्ट हो जाता है। जट भरत जी कृपा करने के इच्छुक हैं, उस पर कृपा करना चाहते हैं, और वे बोले कि भाई हम पर जो टिप्पणी कर रहे हैं वो सही ही है, हम तो तब थकते जब ढोने वाले होते, हम तो ढोने वाले नहीं हैं तो थकने का कोई प्रश्न ही नहीं है, और आप ये जो कह रहे हैं कि बहुत मोटा हो ये हो, तो वास्तव में ये हम पर आक्षेप नहीं है, विवाह तिरासव ये जो मोटा पतला ये सब शब्द प्रयोग किया जाता है ये तो देह के लिए है, तो हम पर ये अप्लाई नहीं हो रहा है, सो संस्थाम गतस्य, और हमारी दवा क्या करेंगे, हम तो अपने स्थिति में। इस प्रसंग में विचार कीजिए तो क्लेम तो किए रहुगण कि दवा कर दूंगा, प्रारंभ में यही कहे कि तुम्हारी दवा कर दूंगा, चिकित्सा कर दूंगा, लेकिन बाद में अनुभव कर रहे हैं कि हमारी दवा हो गई, बाद में जो उनका स्टेटमेंट है तो कह रहे हैं कि आपका वचन है बहुत सुस्वादु दवा है, ये अमृत जैसा लग रहा है, तो उन हमारी जो दृष्टि नष्ट हो गई थी देहाभिमान से उसकी चिकित्सा आपके वचन से हो गई, तो जो वचन बोले कि हम पर हम नहीं थके हैं, हम भार ढोने वाले होते तब थकते, कहने का आशय कि हमें कोई थकान नहीं है, वो कहते कि तुम थक भी गए हो दूर से ला रहे हो, तो वे आक्षेप के रूप में नहीं लेकर कि आप ठीक कह रहे हैं हम थके नहीं हैं, तो अब ये कहे कि हम थके नहीं हैं और ये मोटा पतला हम पर लागू नहीं होता है, तब अब इस पर रहुगण कह रहे हैं कि भाई आप ये कैसे कह रहे हैं कि आप थके नहीं हैं, हम तो देखते हैं कि काम करने से परिश्रम करने से व्यक्ति थक जाता है, तो कह रहे हैं कि दृष्टा श्रमा कर्म तो आत्मनो वही, हम आत्मन मतलब अपने व्यक्तित्व से अपने व्यवहार से तो हमें एकदम अनुभव है कि व्यक्ति परिश्रम करता है तो थक जाता है। ये आप लोगों का भी अनुभव होगा। राजा कह रहे हैं कि हमारा तो भाई अनुभव है आत्मन, हम अपने से मिला करके एकदम निश्चय पूर्वक कह रहे हैं कि व्यक्ति परिश्रम करता है तो थक जाता है। राजा को युद्ध इत्यादि का अनुभव है तो उसके आधार पर कह रहे हैं कि परिश्रम से व्यक्ति थकता है, ये देखा गया है। और भर्तुर गंतुष भवतश्चानुमन्य, तो अपने थकान अपने परिश्रम के आधार पर मैं अनुमान कर रहा हूं कि आप भी थके होंगे, आप भी भार ढो रहे हैं। और यथा सतोदा नयनाद्य भावात, फिर मान लीजिए कि वे कहे कि व्यवहारतन्य, ये सब है व्यवहार से भिन्न जो तत्व विचार है उसमें प्रयोग नहीं होता है। ये जो राजा सेवा की बात है ये तो व्यवहार की बात है, व्यवहार की बात है ये कहे तो ये कह रहे हैं कि व्यवहार भी तो एक तथ्य है ना। कह रहे हैं कि समूल इष्ट व्यवहार मार्ग, ये व्यवहार मार्ग को आप निराधार तो नहीं कह सकते, इसका भी प्रमाण है और इसका भी महत्व है। भी व्यवहार मार्ग जो जगत का व्यवहार है एकदम निराधार होता तो फिर पानी लाना होता तो घड़े की क्या जरूरत है। हम लोग देख रहे हैं कि व्यवहार में भी कुछ सत्यता है, पानी कहीं से लाना है तो घड़ा रहेगा तभी लाएंगे ना। जब ये व्यवहार झूठा होता तो बिना घड़ा का भी पानी ला देते। व्यवहार में भी कुछ दम है, इसका भी महत्व है ना। तो इसमें यही बात कह रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं कि व्यवहार के अतिरिक्त इसका महत्व नहीं, तो व्यवहार तो निराधार नहीं है, व्यवहार का भी महत्व है, इसका भी प्रमाण है, वेद प्रमाण है। और इसके बाद आगे के श्लोकों में और भी इसी सिद्धांत को स्थापित कर रहे हैं कि वे थकान क्यों नहीं होगा। मान लीजिए कि आत्मा को मान लिया जाए कि देह से पृथक है, लेकिन फिर भी देह के अंदर ही है ना, उपाधि तो है ना। तो हम लोग देखते हैं कि उपाधि के प्रभाव से और उसमें जो स्थित है वह भी प्रभावित हो जाता है। तो आगे के श्लोकों में बतलाए हैं कि जैसे चूल्हा है, चूल्हा में आग लगाया जाता है, चूल्हा के ऊपर तसला है, उसके अंदर पानी है, पानी के अंदर चावल है, तो आंच तो चावल पर नहीं जाता है ना। जो आग लगाते हैं तो आंच तसला पर जाता है, और तसला गर्म होता है तो पानी भी गर्म हो जाता है, और पानी गर्म हुआ आग से प्रभावित हुआ तो उसके भीतर जो चावल है वो भी प्रभावित हो जाता है, मुलायम हो जाता है, पक जाता है। तो हम लोग तो देखते हैं आत्मा और देह को अलग भी माने तो प्रभाव तो आता है। शरीर थकेगा तो कुछ कुछ आत्मा पर भी प्रभाव जाएगा ना। तो ऐसे कई एक बात बोले तो आगे सब बातों का उत्तर जड़ भरत जी दिए हैं। तो अभी तो कई एक श्लोक में राहुगण जी की बात को ही चलेगा, लेकिन अब ये जो व्यवहार की बात कह रहे हैं तो उस पर कह रहे हैं कि देखो बात तो बहुत तुम तर्क कर रहे हो, ऐसा ऐसा तर्क दे रहे हो कि लगता है कि बहुत भारी पंडित हो, लेकिन विद्वान व्यक्ति ऐसे नहीं बोलते हैं। जब तत्व विचार करते हैं तो व्यवहार का महत्व नहीं देते हैं, तुम्हारी दृष्टि बिल्कुल व्यवहारिक है। लेकिन तत्व विचार करने वाले जो पंडित हैं तो तत्व विचार के समय व्यवहार का महत्व नहीं देते हैं। तो राजा कह सकते हैं अरे क्यों नहीं महत्व देंगे, ये व्यवहार की बात तो वेद में भी है। कि ना, पंडित लोग उस वेद के व्यवहारिक तत्व को भी स्वीकार नहीं करते। भगवान भी गीता में कहे हैं त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन। और रहोगण कहे कि देखो जब तक व्यवहार से नहीं ऊपर उठोगे तब तक तत्व का ज्ञान नहीं हो सकता। और वे कह रहे हैं कि यह अपने से ही बुद्धि करना होगा। वो एक उदाहरण बहुत सुंदर दिए हैं, उदाहरण से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि व्यवहार का कितना महत्व है। अब मान लीजिए कि आप कहीं यात्रा करने वाले हैं, नौकरी पर या भगवान के तीर्थ में या कहीं जाने वाले हैं, और कोई सपना देखे और सपना में किसी व्यक्ति को कह दिए सपना में है कि हम आपके साथ ही रुकूंगा, आज आपके साथ ही रुकूंगा, तो सपना में कह दिए वो जगने के बाद क्या अपनी यात्रा स्थगित कर देंगे? या सपना में कोई घर बनाना प्रारंभ कर दिए, जगेंगे तो अपना काम बंद कर देंगे कि भाई अब एक घर बनाना शुरू कर दिया तो अब इसको छोड़ करके कैसे जाए? ऐसा नहीं करेंगे ना, वो तो सपना है ना। तो जट भरत जी कह रहे हैं कि नतस्य तत्त्वम ग्रहणाय साक्षात बरी असीर अपि वाच समासन स्वप्ने निरुक्त्या गृह में दिसौख्यम न जस्य हेयानुमित स्वयं स्यात्। स्वयं स्यात् अपने से ही इस व्यवहार में, खास करके गृहस्थी के सुख में हे बुद्धि न हो जाए तो उसको उपनिषद भी तत्व का बोध नहीं करा पाएगा। कुछ अपनी पूंजी चाहिए, जैसे दही जमाना है तो कुछ जोरन डालना होता है। दही तो दूध ही परिणत होता है लेकिन जोरन जरूरी है। उसी तरह किसी व्यक्ति को गुरु का लाभ लेना है, शास्त्र का लाभ लेना है, तो थोड़ा सा अपना वैराग्य भी चाहिए, अपना कुछ विवेक भी चाहिए। और वह विवेक है कि जब तक अपने से यह मति न उत्पन्न हो जाए कि ना ये जो गृहस्थी का सुख है सपने के समान है। जैसे सपना में कोई पद पा जाए या कोई धन पा जाए या कोई परिवार ही पा जाए तो कितना उसका महत्व है। तो जैसे सपने का सुख है ठीक उसी तरह व्यवहार का सुख है। और जट भरत जी एक तरह से डांट लगा रहे हैं कि तुम व्यवहार की बात कर रहे हो, जब तक इस व्यवहार में है बुद्धि नहीं होगी तब तक तत्व बोध नहीं हो सकता, भगवान का ज्ञान नहीं हो सकता, स्वरूप का ज्ञान नहीं हो सकता। जो भी रहुगण आक्षेप कर रहे हैं उनके उक्ति पर उसके उत्तर को दिया गया है, लेकिन अभी जो प्रसंग चल रहा है वो जट भरत जी बोले उसी में कुछ आक्षेप खड़ा कर रहे हैं। तो यहाँ आक्षेप कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं, आप मान रहे हैं कि चलने वाला थकता है, मैं चलने वाला नहीं हूँ। तो हमें तो अनुमान है, मैं तो देख रहा हूँ कि आप चल रहे हैं और हमको अपने जीवन से ऐसा अनुभव है कि चलने से, परिश्रम करने से व्यक्ति थकता है, तो आप भी जरूर थके होंगे। और व्यवहार को कैसे निराधार कह दिया जाए? यदि ये व्यवहार को असत्य मान लिया जाए तो पानी लाने के लिए घड़े की क्या जरूरत है? जब असत्य ही मान लेंगे तो घड़े की तो जरूरत पड़ती है, तो व्यवहार का भी महत्व है। तो ये व्यवहारिक पक्ष को रखे थे जट भरत जी, सिद्धांत दिए कि कैसे व्यक्ति बंधता है उसको स्पष्ट समझा। ये तर्क दे रहे हैं कि आग के संपर्क से जैसे तसला गर्म होता है उससे पानी गर्म हो जाता है और उसके भीतर जो चावल है वो पक जाता है, वैसे आत्मा प्रभावित होगा। लेकिन इनके तर्क में दोष है। ये जो उदाहरण दे रहे हैं वो तो सब भौतिक चीज है, लेकिन शरीर के अंदर जो आत्मा है वो तो भौतिक नहीं है, वो तो चिन्मय है, तो वो उदाहरण फिट नहीं बैठेगा। वास्तव में शरीर के संपर्क से आत्मा प्रभावित नहीं होता है, आत्मा प्रभावित होता है चेतना से। जब देह में अध्यास है, देहाध्यास है, मम बुद्धि है, इससे वो प्रभावित होता है। इस विषय में एक दो उदाहरण बहुत उपयोगी है। मैं एक पत्रिका में पढ़ा एक घटना कि एक व्यक्ति कलकत्ता से आ रहा था, वो देहरादून एक ट्रेन है, दून एक्सप्रेस, उसमें हावड़ा में चढ़ा, उसको जगह नहीं मिली थी और तब तक कुछ व्यक्ति आए और एक बड़ा सा बक्सा लेकर उसी ट्रेन में रख दिए। हटो हटो हटो, बक्सा रखना है, बक्सा रखना है, ले करके रख दिए। वो बक्सा रख दिए तो पहले तो उसको कठिनाई भी खड़ा होना पड़ा, वो टॉयलेट के बगल में बैठा था, लेकिन बक्सा रख दे तो उसी बक्से पर बैठ गया। कोई आते थे टीटी या पुलिस वाले, बक्सा तुम्हारा है ना, हमारा नहीं, वो तो देखा था कोई लादा है, लेकिन वो देखा कि जो व्यक्ति बक्सा को लादे हैं तो आगे के स्टेशन पर बैंडिल आकर के उतर गए, और व्यक्ति प्रतीक्षा करता रहा, देखता रहा कि फिर भी आ रहे हैं कि नहीं, तो वे दिखे नहीं, और बहुत दूर आ गया तो उसको लगा कि अब वो तो उतर गए, छूट गए जो हो। वो बैठा था, कोई पूछता था कि तुम्हारा बक्सा है कि ना, आराम से उस पर बैठा था, गया में उसको उतरना था। अब गया में उतरना था तो देखने लगा को बक्सा वाले आए कि नहीं, वो कहीं दिखे नहीं तो उसके मन में आ गया उतार ले, क्या दिक्कत है, वो बक्सा को उतार लिया। अब जब प्लेटफार्म पर आया और पुलिस वाले पूछे बक्सा कैसा है, बड़ा बक्सा था, तुम्हारा बक्सा है, हाँ, और क्या है इसमें। अब तो उसको घबराहट होने लगी, वो चेक किए तो उसमें बॉडी था, डेड बॉडी था, मुर्दे को उसमें बक्से में लाद करके ट्रेन में कर दिए थे। वो उस पर बैठा था, जब तक मौन बुद्धि नहीं थी उसको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब ही क्लेम किया कि हमारा बक्सा है तो कितना लीगल कॉम्प्लिकेशन बढ़ गया। तो इस संपर्क से देह से आत्मा प्रभावित नहीं होता है, जो भावना है, जो अध्यास है कि यह देह मैं हूं, तो इससे कठिनाई होती है। इस प्रसंग में पता नहीं फिर अवसर मिलेगा, एक बहुत भारी सवाल खड़ा किया जाता है कि भाई देह तो जड़ है और आत्मा प्रकृति से परे, तो सुख दुख कौन भोगता है, देह तो भोग नहीं सकता और आत्मा भौतिक चीज उसको पसंद नहीं, इसको भोगेगा नहीं, उसका तो अपना स्वरूप है, तो सुख दुख कौन भोग रहा है। बहुत सारे प्रश्न जो इंटेलेक्चुअल है वे लोग प्रश्न करते हैं, हम लोग भी शुरू में किए हैं। तो ये समझना चाहिए कि देहाध्यास अध्यास दुख सुख भोग रहा है, अध्यास से तो संस्कृत का शब्द है, इसी को समझ लेना चाहिए। और दूसरे शब्द में कहेंगे तो जड़ और चेतन के एक गांठ पड़ गई है, तो वो गांठ ये दुख सुख का भोग कर रही है। तो रहोगण तर्क दे रहे हैं, वे इस संसार में तो हम लोग देखते हैं कि आग से तसला गर्म होता है, उससे पानी गर्म होता है, उससे भात भी पक जाता है, तो वैसे ही देह का प्रभाव आत्मा पर तो पड़ेगा ही, थकान होगी, लेकिन सब बात को जट भरत जी एक एक करके समझाए हैं, तो वो सब आप लोग आगे के श्लोकों में सुनते रहेंगे। हरे कृष्ण।